राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गौर प्रेमानंदे युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय गौर प्रेमानंदे नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे गुरवे गौरचंद्राय राधिका तदाल्ये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
नमो भगवते वासुदेवाय
नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे
कृष्णा कृष्णा हरे हरे
हरे राम
राम हरे राम
राम राम हरे हरे
राम हरे हरे
नीताय गौरंगा जयो नीताय गौरंगा
नीताय गौरंगा
नीताय Goranga Jayo Nitai Goranga
Nitai 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 Goranga Gora Hari
Nitai Goranga Gora Hari
Gora Hari Jaya 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 Gora Hari
Jai Satchinandana Gora Hari
Jai Satchinandana Gora Hari
Nadia Bihari Gora Hari
Nadia Bihari Gora Hari
Patihita Pavan Gora Hari
Patihita Pavan Gora Hari
Kali Yug Avatari Gora Hari
Kali Yug Avatari Gora Hari
Gora Hari Jaya 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 Gora Hari
Nitai Goranga Jayo Nitai Goranga
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 Jai Gaur Premanande Srimad Bhagavatam Puranam Amalam Srimad Bhagavatam Puranam Amalam Chaitanya Mahaprabhu Matam Idam श्री चैतन्य महाप्रभु का ये मत है. मत क्या किसको कहते हैं? वो बुद्धि जिसने किसी को चुन लिया है उसको मत कहते हैं. जैसे हम इलेक्शन में मत देते हैं ना, मतदान मतलब किसी को हम चुनते हैं. तो मत्ती बुद्धि उसका नाम है जिसने असल में भगवान को चुन लिया है, उसको कहते हैं मती. जैसे भीष्म पितामह कहते हैं इति मति उपक्यल पिता वितर्षणा, वो मेरी बुद्धि जिसमें कोई संसार की वितर्षणा नहीं है वो भगवान में आपको अर्पण करता हूं, ऐसी बुद्धि को कहते हैं सती मति. बुद्धि का नाम है मति, लेकिन वो कौन सी मति है? सती. सती इसलिए है कि भगवान जो परम सत्य है उसको ग्रहण किया है. तो वो बुद्धि, तो महाप्रभु का मत क्या है? भागवतम पुराणम अमलम. ये भागवत जो है अमल पुराण है, इसका शरण लेने लेना भगवान के शरण लेने के समान है, क्योंकि भगवान और भागवत में कोई अंतर नहीं. सो श्रीमद् भागवत महापुराण का पहला और दूसरा स्कंद भगवान के चरण कमल है और फाउंडेशन है भागवत की. ये दो स्कंद जो है ये फाउंडेशन है सारी भागवत. भागवत सारा इसके ऊपर आश्रित है, ये सारे सिद्धांत इसके अंदर. श्रील प्रभुपाद जी ने फर्स्ट कैंटो भागवतम का पहला स्कंद तो वृंदावन में इसकान स्थापना से पहले लिखा है. और श्रील प्रभुपाद जी कहीं भी जाते थे पहला स्कंद श्रीमद भागवत का, भगवत गीता एज इट इज और टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य, ये तीन किताब साथ में है तो सारा शास्त्र. इट इज ए कंक्लूजन ऑफ ऑल फिलोसॉफी. प्रभुपाद पहले स्कंद भागवत में ऑलमोस्ट ही हैज गिवन एवरीथिंग जो एक भक्त के साधन के लिए जरूरी है. तो पहला स्कंद भागवत को बहुत गंभीरता से अध्ययन करना चाहिए. भगवान का चरण कमल है, इसमें 19 अध्याय हैं, 19 चैप्टर हैं पहले स्कंद में. और उसमें तीन संवाद हैं। तीन संवाद का मतलब, संवाद कहते हैं जब गुरु और शिष्य बैठ के भगवान को जानने के लिए चर्चा करें उसको संवाद कहते हैं। जैसे भगवद गीता को क्या कहते हैं, कृष्ण अर्जुन संवाद। तो पहला संवाद है सनक आदि ऋषि और सूत गोस्वामी, दूसरा संवाद है नारद और व्यास संवाद, और तीसरा संवाद है परीक्षित और सुखदेव संवाद। तीन संवाद है पहले स्कंद में। तो संवाद जब होता है तो दो, एक होता है श्रोता, एक होता है वक्ता। श्रोता का मतलब सुनने वाला, वक्ता का मतलब कीर्तन करने वाला, प्रवचन करने वाला। तो पहले वक्ता है सूता और श्रोता है सनक आदि ऋषि। श्रोता जो है वो सूत गोस्वामी है और वक्ता है बहुत बड़े ऋषि, और वो ऋषि कर रहे थे यज्ञ। भागवत सुनना उनका कोई उद्देश्य नहीं था, भागवत शाम को यज्ञ पूरे करने के बाद भागवत सुनने का एक प्रक्रिया, नियम था कि शाम को बेकार बातें नहीं करें, कथा सुननी चाहिए। भागवत नहीं सुननी थी, कथा सुननी थी कोई। तो भागवत सुनना उनका मूल उद्देश्य नहीं था, मूल उद्देश्य यज्ञ था। लेकिन 18वें अध्याय तक आते आते पहले स्कंद में ही वो सब ऋषि कहने लगे कि ये यज्ञ के दूहे से कालापन तो चारों ओर हमको हो गया है, दूहे से दूषित हो गए हैं, लेकिन हृदय पवित्र नहीं हो रहा है, इसलिए अब आप ये कथा ही सुनाइए। वो यज्ञ शुरू करे 10 बजे, पूर्ण आहुति करके पूरा दिन कथा सुनते थे। तो पहले स्कंद में ही उन्होंने यज्ञ को विराम दे दिया, वो संक्षेप कर दिया। पहले यज्ञ होता था दोपहर शाम को 4 बजे तक, और 6 बजे के बाद घंटा 2 घंटा कथा होती थी। अब 10 बजे से पहले यज्ञ पूरा और 8 घंटे कथा। प्रायः भागवत कथा 8 घंटे रोज की करेंगे तब जाके कथा कहीं पूरी होती है। सो दूसरा वक्ता जो है नारद जी और श्रोता व्यासदेव, वो भी भागवत सुनना उनका उद्देश्य नहीं है, उनका उद्देश्य लोक कल्याण के लिए, इतने सारे शास्त्रों को सरल किया लेकिन फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूं तो इसको पढ़ने वाले कहां से होंगे। अब व्यासदेव भगवान का अवतार है, नारद भी भगवान का अवतार है। व्यास देव के मन में ये भाव आना, ये भगवान की प्रेरणा से आया। उनका अज्ञान नहीं था, वो ज्ञान में परिपूर्ण थे, उनके पास पूरा ज्ञान था, लेकिन एक परंपरा की रक्षा करनी थी कि भागवत को अगर अवतार होना है तो परंपरा में होना चाहिए ना। तो नारद से प्रेरणा लेने का मतलब परंपरा में उसको रखने की जरूरत थी, नहीं तो गुरु से सीखने के बाद उसको विस्तार करना चाहिए। तो परंपरा की रक्षा के लिए नारद से व्यास देव को प्रेरणा लेने की जरूरत पड़ी, नहीं तो व्यास देव कोई अनजान नहीं था। भागवत के अवतार की भूमिका, अब इसके बाद जो मुख्य श्रोता है वो है परीक्षित। भागवत का मुख्य श्रोता जिसका उद्देश्य ही भागवत सुनना था और कोई काम नहीं था, वो राजपाट छोड़ के उद्देश्य भागवत सुनने के लिए आया था, इसलिए 12 अध्यायों में परीक्षित की महिमा है। और उस परीक्षित की महिमा में परीक्षित के जन्म के हेतु उनके 3 मातृकुल और 3 पितृकुल के महाभागवत भक्तों का वर्णन है। उत्तरा, द्रौपदी और कुंती, ये 3 भागवत महाभागवत स्त्रियां हैं पहले, और इनकी प्रार्थनाओं को पहले स्थान दिया हुआ है भागवत में। 3 पीढ़ियों की माताओं की गोद में जब कोई बालक पल के तैयार होता है तब भागवत पुरुष होता है, तब उसके लिए भागवत का अवतार होता है। फिर 3 पितृकुल में भीष्म पितामह का भगवान के दर्शन करते हुए प्राण त्यागना, फिर युधिष्ठिर महाराज के राज की महिमा, पांडवों के राज त्याग करना, कृष्ण नहीं तो ये हम संसार का राज नहीं चाहिए, तो इन पांडवों के कुलों की यहां तक के धृतराष्ट्र के भी सदगति का वर्णन, तो ये तीन पितृ कुल का वर्णन हो गया। अब परीक्षित की अपनी योग्यता दिखाते हुए कहते हैं, पहले तो जन्म से पहले भगवान का दर्शन किया, दूसरा अब जो प्रसंग चल रहा है इसमें समय काल के ऊपर विजय प्राप्त की। काल के ऊपर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता है, काल बलवान है लेकिन कलियुग काल है, उसके ऊपर परीक्षित ने विजय प्राप्त की। यह परीक्षित की दूसरी विशेषता है, भगवान का दर्शन जन्म से पहले, काल के ऊपर विजय प्राप्त, और धर्म को पहचानना बैल के रूप में और गाय को पहचानना, पृथ्वी को गाय के रूप में पहचानना, तो ये पहचान करना, धर्म की पहचानना बहुत मुश्किल होता है। तो परीक्षित महाराज की तीन ये विशेषताएं हैं। और ये 16वां अध्याय जो हम पढ़ रहे हैं इसमें भगवान श्री कृष्ण तो पहले स्वधाम जा चुके हैं, और ये समाचार अर्जुन ने जैसे युधिष्ठिर महाराज को दिया, महाराज युधिष्ठिर ने भी अपना ताज नीचे, अपना मुकुट नीचे रख दिया, बोला मैं राज नहीं करूंगा, भगवान नहीं रहा तो राज नहीं करूंगा। राज भगवान ने दिया था, उसकी सेवा कर रहे थे, वो नहीं रहे तो हम उसके पास जाएंगे, यहां क्यों राज करेंगे। तो भीम ने भी अपना मुकुट उतार के नीचे रख दिया कि भैया मेरे को राज करने के लिए नहीं कहना, साथ रहे हैं साथ चलेंगे। अर्जुन तो पहले ही भगवान के जाने के वियोग में विह्वल था, उसको तो मुकुट था ही नहीं, लेकिन दो भाई नकल शेदन ने भी अपना मुकुट नीचे रख दिया, हमने राज नहीं करेंगे भैया हम साथ रहेंगे। ये पांच पांडवों के साथ रहने का, राज करने को एक भी तैयार नहीं है, तो अब किसको राज दिया जाए। और ये समाचार जैसे अंदर महल में पहुंचा तो कुंती ने तो आधा ही सुना, भगवान श्री कृष्ण स्वधाम चले गए हैं सुना, उससे पहले प्राण निकल गए। अब एक तरफ तो माता कुंती के प्राण निकल गए हैं, घर में अर्थी पड़ी है, और एक तरफ ये राज करने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में परीक्षित को राज तिलक के लिए तैयार किया। तो परीक्षित बीच में कोई है नहीं, पांडवों के वंश में परीक्षित ये एक ही पांडु कुल या कौरव कुल में एक ही ये बचा है, दीपक जो भक्ति का बीज है जो बचा है, भगवान ने अपनी भक्ति की रक्षा की है। ये तो कहा था उत्तरा ने कि ये तो आपके भक्त है, और ये अगर नाश हो गया तो भक्ति की परंपरा लुप्त हो रही है पांडु कुल की, इसकी रक्षा करनी है। तो भगवान तो परीक्षित को राज तिलक देने का तैयारी हो गया, और ऐसी स्थिति में परीक्षित बड़ा चिंतित है, मैं अभी छोटा हूं, अब मेरे को राज तिलक आप दे रहे हैं। परीक्षित के जन्म की कथा इससे पहले आ गई है, उसके लिए पंडितों ने उसके कैसा ये राजा बनेगा बड़ा अच्छा वर्णन है उसमें, जितने अच्छे से अच्छे उदाहरण आपको दुनिया में मिलते हैं वो सब परीक्षित में घटित हो रहे हैं। अर्जुन जैसा तीर चलाने वाला, पांडु जैसा महारथी बनेगा, और राम जैसा शीलवान होगा, ऐसे सब उनके नाम गुणों का वर्णन हो चुका। लेकिन ये भी वर्णन हो चुका कि उसका विवाह उत्तर कुमार की बेटी, नाम अभी याद आएगा मेरे को, किसी को याद है? उत्तरा माँ है इनकी, उत्तरा माँ है, और इसके नाम मेरे को याद आएगा अभी, उसके साथ विवाह हुआ है और चार पुत्र हुए हैं, और बड़े पुत्र का नाम जन्मेजय है, और महाराज परीक्षित राज कर रहे हैं। और यहां असल में परीक्षित महाराज के दिग्विजय का वर्णन है। दिग्विजय कहते हैं राजा जब सब दिशाओं में जाते हैं और कोई उनका सामना नहीं करते हैं तो कहते हैं सब दिग मतलब डायरेक्शन। अब ये यहां कथा नहीं है भागवत में, स्कंद पुराण में ये कथा है कि भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम जाने के बाद पांडवों ने राज परीक्षित को दे दिया हस्तनापुर का, और मथुरा मंडल का राज भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध का पुत्र वज्रनाभ को मथुरा मंडल का राजा बनाया। और ये वज्रनाभ भी यदुवंशी है, भगवान श्री कृष्ण का ही ग्रेट ग्रैंडसन है, परपोता है, तो सारे यदुवंशियों को श्राप मिला था, तो ये कैसे बचा? जब यदुवंशी श्राप से, इसका मतलब यदुवंशियों का प्रभास क्षेत्र में आपस में लड़के मरना भी भगवान की लीला है। भगवान ने उद्धव को तो जीवित रखा, जो भगवान के चाचा का लड़का भाई है और यदुवंशी है, और ये वज्रनाभ जीवित रहा, इनको भगवान ने जीवित रखा। यादव होते भी क्यों? भगवान को यह दिखाना था कि शराब से नहीं मर सकता कोई, मेरी इच्छा है। वो सब देवता आए थे, अपने अपने लोग जाना है, उनको यहां रहने की जरूरत नहीं है। उद्धव को अपना प्रतिनिधि करके रखा, आज भी बद्रिक आश्रम में उद्धव भगवान का प्रतिनिधि है, और बद्रिक आश्रम में नर नारायण भारत वर्ष का आराध्य देव है, और नारद जी उनकी पूजा निरंतर करते हैं, और उद्धव वहां भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है। कहीं भी भगवान नारायण को ले जाना है तो उद्धव जाएगा, भगवान नहीं जाएंगे, उद्धव बाहर जाता है उत्सव मूर्ति में। तो भगवान ने उद्धव को तो बद्रिक आश्रम भेज दिया एक रूप से, और एक रूप से उद्धव आज भी ब्रज में कुसुम सरोवर के पीछे उद्धव कुंड के पास लता के रूप में रहता है, औषधि लता के रूप में रहता है। तो ऐसे उद्धव आज है। वज्रनाभ की उद्धव को तो गोपियों का भी बड़ा कृपा प्राप्त हुई है, और भगवान श्री कृष्ण का तो बहुत घनिष्ठ मंत्री और मित्र और सब कुछ था ही। वज्रनाभ भी जब अपनी मां के उदर में था, गर्भ में था, तब कुरुक्षेत्र में ये सब लोग आए थे सूर्य ग्रहण के समय। तब वज्रनाभ की माता ने राधा रानी की बहुत सेवा की थी, क्योंकि ब्रजवासी भी आए थे, राधा रानी भी वहां आई थी, महीनों तक रहे थे। तो उस वक्त वज्रनाभ की मां को, अनिरुद्ध की पत्नी को, राधा रानी ने आशीर्वाद दिया था, बहुरानी तेरा बेटा हमारे ब्रज की लीलाओं को प्रकट करेगा और ब्रज का राजा बनेगा। तो कृष्ण और राधा रानी दोनों की कृपा से वज्रनाभ ब्रज का राजा बना। लेकिन वज्रनाभ जब ब्रज का राजा बना तो ब्रज तो कोई भी नहीं था, ब्रज में सारे ब्रजवासी भगवान के साथ चले गए, और जरासंध ने बाकी मथुरा मंडल को तहस नहस कर दिया, कुछ भी नहीं था। तो परीक्षित महाराज वज्रनाभ से मिलने गए। परीक्षित ने कहा, बेटा आपको न तो धन की कोष की जरूरत है, न ही सेना की जरूरत है, हम आपकी रक्षा और आपके यहां यहां का सब देखेंगे, आप यहां आराम से बैठकर भगवान आप यहां राज कीजिए। तो उन्होंने कहा, हम भी क्षत्रिय हैं, अपनी रक्षा भी कर सकते हैं, लेकिन राज करें किसके, प्रजा है ही नहीं। तब सांडल्य ऋषि के पास परीक्षित और वज्रनाभ दोनों गए। तो सांडल्य ऋषि ने ब्रज की महिमा बताई, और ब्रज में आज भी भगवान की लीला हो रही है, लेकिन अप्रकट हो रही है, वो दिख नहीं रही। अब आप एक काम करो, जो भगवान के लीला के स्थल यहां थे उन सबको पुनः निर्माण कराओ वज्रनाभ। तो परीक्षित ने बहुत से धनी सेठों को और काम करने वालों को मथुरा मंडल में भेज दिया, और फिर भगवान की सारी लीलाओं की स्थलियों का निर्माण शुरू हुआ। तो ये जो मंदिर है, गोपीनाथ, गोविंद देव, ये सब वज्रनाभ के समाने के बने हुए, ये ठाकुर जी भी वज्रनाभ में स्थापित किए थे, गोविंद देव, हरदेव और वृंदा देवी, गोपीनाथ, ये सब वज्रनाभ के ही स्थापित किए हुए विग्रह हैं, और वज्रनाभ में सारे ब्रज के मथुरा मंडल। अब यहां कथा ऐसे आती है वहां कि भगवान की रानियां भी वहां रह रही थी, उत्तरा भी वहां रह रही थी, उत्तरा भी वहां ब्रज में चली गई थी, परीक्षित की माता है लेकिन फिर ब्रज में जाती थी उनके पास। तो कालिंदी जमुना जो भगवान की चौथी पटरानी है वो बड़ी खुश रहती थी, बाकी सब भगवान के विरह में दुखी रहती थी। तो सबने पूछा कि यमुना आप क्यों दुखी है इतनी, आप दुखी नहीं है, आपको क्या अपने प्रिय कृष्ण का विरह नहीं हो रहा है? बोला, कहां विरह होता है, जो राधा रानी का शरण लेता है वो नित्य कृष्ण की लीला का दर्शन करता है, मैं तो और राधा रानी के चरणों में रोज वृंद में भगवान की लीला देख रही हूं, तो ये कैसे हो सकता है? तब पूछा गया, ये हो सकता है अगर उद्धव कुंड में कीर्तन किया जाए, और उद्धव जी प्रकट हुए कीर्तन में, उद्धव प्रकट हुए और पहली भागवत कथा उद्धव ने बताई। उद्धव ने जो भागवत कथा बताई वो सुनी वज्रनाभ और भगवान की रानियों ने, और मां उत्तरा ने, और परीक्षित वहां बैठा था जब तक सिर्फ भागवत का इंट्रोडक्शन शुरू हुआ। जैसे भागवत का महत्व पूरा हुआ तो परीक्षित को संदेश आया, हस्तिनापुर महाराज तत्काल आपकी आवश्यकता है, आप राज में आइए, कोई इमरजेंसी आ गई। अब परीक्षित महाराज भागवत उद्धव से सुन नहीं पा रहा है, उसको इमीडिएटली वहां से जाना पड़ रहा है। तो परीक्षित बड़ा दुखी होकर कहता है, महाराज उद्धव अब मैं भागवत कब सुनूंगा। तो उद्धव कहते हैं, ये तो भागवत भगवान के परिक्रम के लिए है, इस धरती के ऊपर भागवत का अवतार आपके लिए विशेष होगा। तो यहां परीक्षित को आश्वासन दिया गया, लेकिन परीक्षित दिग्विजय के लिए यहां आया और अपने राज में दिग्विजय करने चला गया। और वहां कथा चल रही थी वृंदावन में, पहली कथा ओरिजिनल जो है गोवर्धन की तलहटी में कुसुम सरोवर के पीछे उद्धव ने की थी और भगवान की रानियों ने सुनी थी। और उस कथा में भगवान साक्षात श्री कृष्ण प्रकट हुए थे और सबने देखा था, भगवान अपने भक्तों के साथ प्रकट हुए थे और सबने भगवान को प्रार्थना की, भगवान ने कहा क्या वरदान चाहिए, और सबने कहा जहां आपकी कथा हो वहां आप प्रकट होके सबको आशीर्वाद देना, और भगवान ने तथा अस्तु कहा। तो भागवत जहां होती है वहां भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, ऐसे उस कथा में महात्म लिखा हुआ है। अब परीक्षित दिग्विजय के लिए चला गया, तो उस दिग्विजय करते हुए परीक्षित महाराज का भेंट कलयुग से होती है। तो ये अध्याय का नाम है, ये अध्याय का नाम है परीक्षित रिसीव द एज ऑफ कली, इसका मतलब परीक्षित महाराज का कलयुग से भेंट। अब जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं ये श्लोक सनक आदि ऋषियों का मुख से निकला हुआ है, और अगर आप पहले श्लोक, आप ये छठा श्लोक है, तो आप पहले चार पांच श्लोक पढ़ के आए हैं। सूत गोस्वामी को, सूत गोस्वामी ने एक शब्द में कह दिया सूत्र में कि ऐसे परीक्षित महाराज दिग्विजय गए थे और एक जगह उनको कलयुग से भेंट हो गई, बस कथा पूरी हुई। तो सनक आदि ऋषि पूछते हैं कि अगर इस कथा से भगवान श्री कृष्ण की गुण लीला रूप की कुछ वर्णन होता है तो आप ये कथा हमको विस्तार से बताइए। अब ये दूसरा श्लोक ऋषि आगे कहते हैं, क्या कहते हैं इसका अब हम पाठ करेंगे। कौन कह रहे हैं? ये सनक आदि ऋषि कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? सूत गोस्वामी को। इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या है कि जो कथा कृष्ण के विषय में हो वो कथा सुननी चाहिए, और जो कथा और किसी काम की कृष्ण से अलग हो उसको कभी नहीं सुनना चाहिए, वो टाइम का वेस्ट है। तो ये है सिद्धांत का श्लोक। पहला श्लोक इससे आपने पढ़ा है तो उसका मैं ऐसे ट्रांसलेशन पढ़ लेता हूं। सोनक उवाच कस्य हेतुर निग्रहाः कलीलम दिग्विजये नृपः निरवेदचन दृक् शूद्रः को असौ गामयः पादौ तत कथायां महाभागा यदि कृष्ण कथा आश्रयम्। वो महाराज परीक्षित ने उस कलयुग को राजा के वेश में देखा, ये कथा हम विस्तार से इसलिए सुनना चाहते हैं अगर इसमें, यदि अगर इसमें कृष्ण कथा आश्रयम्, अगर भगवान श्री कृष्ण का इसमें अगर वर्णन है तो ये कथा बताइए, नहीं तो हमारा कथा से कोई ऊंची नहीं है। पहला स्कंद सिर्फ एक है जिसमें भगवान श्री कृष्ण भक्त वत्सल के रूप में दिखाई देते हैं पांडवों के साथ। दूसरे से लेके नवें स्कंद तक भगवान श्री कृष्ण कहीं प्रकट नहीं है, केवल भगवान क्या होता है, कैसे अवतार लेता है, क्या करता है उसका वर्णन है। फिर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन दसम स्कंद में है। सो बीच में दो से लेके नौ तक स्कंद तक भगवान श्री कृष्ण का भागवत में सीधा दर्शन नहीं है, उनकी उनके अलग अवतारों का वर्णन है लेकिन स्वयं का नहीं है। स्वयं भगवान सिर्फ पहले स्कंद में भक्त वत्सल के रूप में कैसे पांडवों के साथ भगवान व्यवहार कर रहे हैं। क्या भगवान को देखना है तो पांडवों के पास जाके देखो, ब्रह्म को देखना है तो ध्यान कर लो, ज्ञान प्राप्त कर लो, परमात्मा को देखना है तो ध्यान कर लो, लेकिन भगवान को देखता है देखना है तो पांडवों के घर में जाके देखो क्या कर रहे हैं, अपने भक्तों के साथ कैसे व्यवहार करता है। तो पांडव है वत्स और भगवान है वत्सल। पांडव है वत्स मतलब जैसे बछड़ा होता है, और भगवान है गाय वत्सला, उनकी रक्षा करती है, उनका पालन पोषण करती है, उनके लिए अपने वचनों को तोड़ देता है। ये भगवान की भगवता पांडवों के साथ व्यवहार में देखने को मिलती है। तो आज ये श्लोक जो हम पढ़ रहे हैं, ये शौनक आदि ऋषि अब ये आज का श्लोक कह रहे हैं, छठा। आपके पास है, निकालिए अपना श्लोक को। अथवा अस्य पदां भोज मक्रंदलिहां सता किमन्यै असदालाप्यै आयुषो यद असद्वयः। अथ आसाय पदां भोज मक्रंदलिहां सता किमनै असदालाप्यै आयुषो यदस्व्ययः अथवास्य पदां भोज मक्रंदलिहां सता किमन्यसदालाप्यै आयुषो यदा असद्व्ययः। कोई पाठ करें एक दो। अथवास्य पदां भोजम मक्रंदलिहां सता किमन्यै रसदालाप्यै आयुषो यद असद्व्ययः। अथास्य पदां भोज मक्रंदलिहां सता किमन्यसदालाप्यै आयुषो यद असद्व्ययः। अथास्य पदां भोज मक्रंदलिहां सता किमन्यसदालाप्यै आयुषो यद असद्व्ययः। अथवा, अथवा का मतलब है अगर कृष्ण की लीला इसमें नहीं आती है, कृष्ण का वर्णन नहीं आता है तो कोई जरूरत नहीं है। अथवा अथवा अगर इसमें वो नहीं है तो हम क्यों, हम अगर इसमें ये है तो हम सुनना चाहते हैं। क्या है? अस्य इसमें, किसमें? कलयुग और परीक्षित के प्रसंग में पदाम बोज मकरंद लिहाम सताम। पदाम बोज, अंबुज कहते हैं कमल को और पाद कहते हैं चरणों को। तो इसकी दो परिभाषा तात्पर्य में है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं। पहले तो जो गोलोक धाम है ना, वो कमल की पंखड़ी जैसा है, पूरे का पूरा गोलोक धाम कमल जैसा है, वैसे कमल है। उसके अंदर अष्टदम दल कमल है, जिसके बीच में राधा कृष्ण है और चारों ओर अष्ट गोपियां हैं, ऐसे सारा कमल से ही तुलना दी गई है। तो भगवान जब धरती के ऊपर अवतार लेते हैं तो अपने गोलोक धाम उस पदम को नीचे लाते हैं, तो उस कमल को ही साथ में लाते हैं। इसलिए भगवान को, भगवान कहां बैठे हुए, बोला अपने गोलोक धाम के कमल के ऊपर बैठे हुए, तो वो बैठे ही कमल के ऊपर, तो कमल साथ अपने लाते हैं। पहला इसका अर्थ ये। दूसरा है कि भगवान के चरणों की तुलना भी कमल से दी जाती, भगवान के चरणों की कम तुलना कमल से क्यों दी जाती है? और भी तो बहुत अच्छे सुंदर सुंदर सुगंध वाले पुष्प हैं, तो कोई कारण है कि भगवान की आंख भी कमल नयन कमल नाभि नमः कमल नाभाय नमः कमल मालिने नमः कमल नेत्राय नमः कमल अंग्रे, ये सब कमल से क्यों तुलना भगवान की दी जाती? कोई कारण? मतलब ब्रह्मा जी की क्रिएशन कमल नहीं है, जो कुछ ब्रह्मा ने बनाया है उस वो जिसके ऊपर ब्रह्मा पैदा हुआ वो कमल। इसका मतलब कमल तो भगवान ब्रह्मा से पहले का है, तो भगवान ब्रह्मा के बनाए हुए नहीं है, इसका अर्थ ये है। किसी भी ऐसी चीज को चीज जो ब्रह्मा ने बनाई है उससे भगवान की तुलना नहीं की जाती है। भगवान वैसे अलौलिक अलौकिक है, दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है, तो उसको किसी भी ऐसी चीज से तुलना नहीं दी जाएगी जो ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित है, क्योंकि ब्रह्मा ही कमल के ऊपर प्रकट होते हैं। और वैसे कमला लक्ष्मी का नाम है, कमल के ऊपर बैठने वाली है लक्ष्मी, उसका नाम ही है कमला, और वो भगवान के चरणों के ऊपर सदा बैठी होती है। उसका स्थान कहाँ है? भगवान के चरणों के पास है, तो कमला लक्ष्मी को भी कमला कहते हैं, तो कमल के ऊपर ही विराजमान होती। सो यहां भगवान को कहा गया अंबुहा पदम पदाम्बोज। अब कमल के अंदर क्या होता है? मकरंद। मकरंद किसको कहते हैं? जो उसके अंदर से रस निकलता है, कमल का रस। और उसको प्रभुपद ने हनी लिखा है शब्द, दोज हाँ हनी हनी। वैसे हनी का भाव ये है कि भगवान के चरणों से निकलने वाले रस को पीने वाले, लिहाम शब्द है मकरंद, लिहाम ली है। ये चार प्रकार के भोजन में एक भोजन को कहते हैं लीहते। चार प्रकार का भोजन कौन सा है? एक चबा के खाना, एक चूस के खाना, एक चाट के खाना। लीहना का मतलब चाटना, हाँ जैसे चटनी खाते हैं उसका नाम ही चाटना है। और एक गेह के मतलब निगल जाना, जैसे जैसे जूस पीते हैं, तो एक निगलने वाला भोजन, एक चबाने वाला भोजन, एक चाटने वाला भोजन और एक चूसने वाला भोजन। तो लीह से मतलब चाटना। भगवान के चरण कमल में लगे हुए, भगवान के चरण कमल में, कमल हो गया अपने आप, चरण कमल हो गया, कमल का मतलब पदम हो गया, हाँ पदम हो गया, में लगे हुए प्रभुपाद ने शब्द अंग्रेजी में लिखा है मकरंद। मकरंद एक माखी में खुशबू नहीं होती है, हनी में खुशबू नहीं होती है, लेकिन भगवान के चरण कमल में उसके ऊपर जो लगा होता है बहुत सुंदर चंदन और तुलसी दल, तो उसमें एक बहुत दिव्य सुगंध होती है। और उस सुगंध का चमत्कार तो चार कुमारों ने देखा कि उसको सूंघते ही उनका ब्रह्म ज्ञान उड़ गया और भक्ति उनके हृदय में जागृत हो गई। तो ये जो ऐसा उदाहरण इसका, भगवान के चरण कमलों में लगे, चरण कमलों से निकलने वाले उस अमृत को मकरंद, मकरंद शब्द ऐसा है मकरंद लीह, लीह का मतलब चाटने वाले। ये कौन चाटते हैं भगवान के चरण कमलों में से निकलने वाले मकरंद को? कौन चाटते हैं? मकरंद का क्या अर्थ होना चाहिए? हिंदी में क्या लिखा है? हिंदी में क्या लिखा है?
भगवान के भक्त भगवान के चरण कमलों के से प्राप्त मधु के चाटने से आगे हैं।
जो दो शब्द जो है मकरंद लिहाम मतलब भगवान के चरण कमलों से मधु को चाटने वाले, तो वहां मधु लिखा है मकरंद। वो भंवरे जो होते हैं ना, भंवरे जाके अंदर बैठते हैं कमल के जहां मकरंद होती है, उसको पीते हैं, उसको चाटते हैं, और शाम के वक्त कमल बंद हो जाता है। कमल शाम को बंद हो जाएगा, सूरज चला गया कमल बंद हो गया। अब भंवरा अंदर बैठ जाएगा, बाहर निकलेगा नहीं। वो काले भंवरे में इतनी ताकत है, वो लकड़ी को तो छेद करके निकल आता है बाहर, लकड़ी में होल कर सकता है, उसके पास ये कला है लेकिन कमल से इतना प्रेम है उसको निकलेगा नहीं, सुबह तक मर जाएगा। प्राण दे देगा लेकिन उसमें आसक्ति इतनी नहीं, बाहर निकलेगा नहीं, उसको छोड़ के और कहीं नहीं जाएगा, उसी के अंदर पड़ा रहेगा। तो लीह से सताम, सताम कहते हैं, वैसे भक्तों को सताम कहते हैं, सताम जो जैसे विद्वान है, जिसके पास विद्या विद्या है वो विद्वान है, जिसके पास धन है वो धनवान है, और जिसने सत्य का आश्रय लिया है वो सताम है। तो सत्य कौन है? परम सत्य भगवान है। पहले श्लोक भागवत का, सत्यम परम धीमहि, तो परम सत्य तो भगवान है। तो जिसने सत्य को ही ग्रहण करके रखा है वो सताम, तो सताम कहते हैं भक्तों को जिन्होंने सत्य को ग्रहण किया है, असत्य को नहीं, सत्य को। असतो मा सत गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर मा अमृतम गमय। जो इस श्लोक में जो सताम है, सत्य है, वो सत्य है भगवान, और सताम वो है जो उस सत्य को ग्रहण करते हैं। पहले श्लोक में मंगलाचरण में भगवान श्री कृष्ण का सीधा नाम न लेकर व्यास देव ने कहा है सत्यम परम, और ये सत्यम परम दसम स्कंद भागवत के दूसरे अध्याय में जाके इसका इसकी माना निकलती है, इसका अर्थ निकलता है। कौन कहता है? ब्रह्मा और शंकर, ये दो आचार्य हैं बड़े, और नारद तीसरा इनके साथ है। ये उस वक्त कहते हैं, अब भगवान श्री कृष्ण का प्रकट नहीं हुआ है, भगवान अभी तक देवकी मां के उदर में है, तब वो गर्भ स्तुति में कहते हैं सत्यम परम, आप परम सत्य हो। किसको कहेंगे? कृष्ण को कह रहे हैं। सत्य व्रतम, आपका व्रत सत्य है, आपने कहा था अवतार लूंगा, आप आ गए। सत्यम त्रयी सत्यम, तीनों कालों में सत्य है। सत्यस्य योनि, आप सत्य के उत्पन्न उद्गम स्थान है, तो वहां परम सत्य कौन है? बोला श्री कृष्ण। वहां जाके ये परम सत्य की माना शंकर और ब्रह्मा जी के द्वारा उद्घाटन होता है, पता लगता है। तो सताम का क्या अर्थ हुआ? भगवान के भक्त। और श्रील प्रभुपाद ने शब्द क्या लिखा है? ऑफ दोज हु आर टू एग्जिस्ट एटर्नली। तो भक्त सदा नित्य रहते हैं, भक्त क्या मरेंगे नहीं? क्या जन्म लिया है भक्त तो क्या मरेंगे नहीं, बूढ़े नहीं होंगे? हाँ, तो भक्त सताम कैसे हो गए? भक्ति नहीं मरेगी, भक्ति नित्य है। भक्त नहीं, भक्ति नित्य है। जो उसने भक्ति की है वो भक्ति नाश होने वाली नहीं है। शरीर जाएगा, चला जाएगा, लेकिन भक्ति नहीं जाएगी, भक्ति भक्त के साथ रहेगी। तो भक्ति तो ये शरीर नहीं है, आत्मा के साथ भक्ति नित्य निरंतर रहेगी। तो सताम का अर्थ है सदा रहने वाला, या सत्य का प्रभुपाद ने अर्थ निकाला है एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस सत्य जो सदा रहने वाला है। अब कौन सदा रहने वाला है? भगवान और भगवान के भक्त। भगवान अकेले कभी नहीं होते, भगवान हमेशा अपने भक्तों के संग होते हैं, और भगवान के भक्तों की महिमा श्रीमद् भागवत का एक सब्जेक्ट मैटर, एक विषय है। उस विषय का नाम है ईशानु कथा। ऑफ द 10 सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ भागवतम, के 10 विषयों में से एक विषय है ईशानु कथा। ईश मतलब भगवान, अनु मीन्स उनके अनुगामी भक्त, भगवान और भगवान के भक्तों की कथा, इसको कहते हैं ईशानु कथा। और नवा स्कंद पूरे का पूरा ईशानु कथा से भरा हुआ है। नवे स्कंद में भगवान रामचंद्र का अवतार है, परशुराम का अवतार है, श्री कृष्ण का अवतार है, बलराम जी का प्रकट है, और बाकी भक्तों की गिनती करेंगे तो नहीं तो भी हजारों के नाम में सारे भक्त हैं, और सारे के सारे लिबरेटेड सोल है, कोई ऐसा नहीं है जिसकी अधोगति हुई हो। तो भागवत पुराण भगवान का है कि भक्तों का है? दोनों का है। भागवत पुराण में भगवान और भगवान के भक्तों दोनों की महिमा है, और भगवान को तो भगवान के भक्तों की महिमा अच्छी लगती, क्योंकि भगवान की महिमा भक्तों की महिमा से ही बाहर निकल के आती है। तो यहां सताम का अर्थ क्या हुआ? यहां सताम का अर्थ हुआ नित्य भगवान के साथ रहने वाले, जो भगवान के चरण कमलों के अमृत को पीते रहते हैं, चरणामृत को पीते हैं, मधु को पीते रहते हैं। वैसे भी चरणामृत में मधु डालते हैं मीठा करने के लिए, पांच चीजों में एक तो मधु होती है। अब कहते हैं किम अन्यई, अगर कृष्ण कथा नहीं निकलती है किम अन्यई, अगर कुछ और है असत आलापई, ये भक्त है सताम, उनको असत जो चीज है संसार की है, आलापई का मतलब कोई गाता है दुनिया की बातें, भगवान से हटके और कुछ भी है उसको कहते हैं अन्य असत आलापई, वो बेकार है, वो असत है, वो नाशवंत है और वो टाइम वेस्ट करने वाला है। क्या करेगा वो आयुषो, आयुषो का मतलब उम्र, हमारी जो आयु है उसका क्या करेगा, असत वयः बेकार में खर्च कर देगा। भगवान की कथा के संबंधी बात अगर नहीं है तो अन्य बात हमारे जीवन को नाश कर देगा, हमारा जीवन नाश हो जाएगा। तो ऐसी कथा अगर भगवान का नाम इसमें नहीं है तो फिर आप कथा नहीं कहिए। अगर कृष्ण का इसमें इसका कृष्ण का प्रकट्य होता हो तो फिर आप कथा कहिए। ये उनकी कृष्ण कथा में तीव्र इच्छा सुनने की है और कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। तो ये हो गई क्वालिफिकेशन सुनने वाले की। वैसे भागवत के महात्म में सुनने वाले चार प्रकार के उत्तम कोटि के और चार प्रकार के निम्न कोटि के माने गए। तो उत्तम कोटि के चार प्रकार के हैं, उसमें से मीन, हंस, शुक और चौथे का नाम क्या है, मीन का मतलब जो जल के से, जल से बाहर रह नहीं सकती, कथा से बाहर रह नहीं सकती, और मीन आंख से आंख मिला के जो सुनता है वो श्रोता, और दूसरा हंस, वो जो सार ग्राही है कथा में से, भगवान के सार सार को पकड़ता है, और तीसरा सुक है, जैसे सुखदेव को जो सुनता है उसी को हमेशा आलापता रहता है। हंस, सुक, मीन और एक चौथा भी है चातक। चातक वो केवल सत्य को ही सुनेगा और बेकार टाइम नहीं सुनेगा। और चार जो अवर है वो कौन सा है, एक उनमें से है बैल, अंगूर डालो या खली गालो, हाँ बहुत अच्छा, कहाँ कथा सुनने गए, अरे बहुत अच्छी कथा, किसी की भी कथा हो वहां जाएगा ही जाएगा, वो सार ग्रही नहीं होता है। और दूसरे को कहा उष्ट, ऊंट की तरह अच्छा खासा रस पड़ा होता वो छोड़ के कांटे खाएगा। तो ऐसे अवर, ये ऐसे श्रोताओं का वर्णन भागवत के महात्म में है। या सिर्फ एक बात कहते हैं, कभी कभी लोग कहते हैं कि भागवत तो व्यास देव ने प्रकट सब शास्त्रों के बाद में किया, तो पद्म पुराण, स्कंद पुराण में भागवत का महात्म कैसे, वो तो पहले लिखी है उनमें कैसे। तो इसका उत्तर ये है कि भगवान क्या जब प्रकट होते हैं उससे पहले होते हैं कि नहीं होते हैं? भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ उससे पहले थे कि नहीं थे? थे ना। तो कभी प्रकट होते हैं कभी नहीं प्रकट होते, ऐसे भागवत और भगवान में कोई अंतर नहीं है, कभी भागवत प्रकट होता है कभी अप्रकट हो जाता है। तो पहले भागवत था फिर अप्रकट हो गया, फिर वापस वेद व्यास के तपस्या से पवित्र हृदय में प्रकट हो गया। तो उसको व्यास देव को, ऐसे नहीं कि भागवत व्यास देव ने बनाई, ऐसे नहीं है, भागवत नित्य है, वो व्यास देव के हृदय में प्रकट हुई, तो उसको कहते हैं व्यास देव भागवत के ऋषि है। जिस ऋषि ने जिस मंत्र को प्रकट किया वो उसका ऋषि होता है, लेकिन मंत्र तो पहले वेद से भगवान से आया है। तो भागवत नित्य है, शाश्वत है, ऐसा नहीं है कि भागवत पहले नहीं था और अब प्रकट हो गया, ऐसा नहीं। अब इस श्लोक का अनुवाद पढ़े। भगवान के जो भक्त होते हैं वो भगवान के चरण कमलों में लगे हुए मधु को चाटते रहते हैं, उनके लिए बाकी संसार की बातें बेकार हैं, समय का ज्ञान है और आयु का हरण करती हैं, इसलिए उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है उनका। ये शनक आदि ऋषि कह रहे हैं कि हमारे को और कोई टॉपिक नहीं सुनना है, अगर भगवान का इसमें वर्णन है तो सुनाइए। इससे हमें क्या सीखना चाहिए कि जहां भगवान की कथा है तो कथा सुननी चाहिए, बेकार की कथा सुनने से टाइम बेकार नहीं गंवाना चाहिए। इस श्रवण की महिमा कब पता लगेगा, अब ये कथा पूरी हो जाएगी उसके बाद आप बैठ के क्या बात करते हैं इससे पता लगेगा कि आपको कथा अंदर में आई कि नहीं आई। अगर वहां बैठ के आप कथा के ऊपर चर्चा करेंगे कि ये जो इस कहा था ये फलाना ये फलाना, तो समझो कि कथा का आप कीर्तन कर रहे हो श्रवण के बाद। और वहां जाके आपका कहां आज, इसके बाद कहां जाना है, आज का प्रोग्राम कहां है, इसका मतलब कथा अंदर गई नहीं। श्रोत गृहीता, श्रोत गृहीता, वो भगवान का भक्ति ज्ञान और वैराग्य वो श्रोत गृहित, वो श्रवण से ग्रहण होता है। और श्रवण किया तो श्रवण के बाद दूसरा है कीर्तन। आपने श्रवण किया है तो इसको जाके कीर्तन करना चाहिए, कहीं उठने के बाद इसी के ऊपर। जैसे आप एग्जाम हॉल से कभी आते हो ना, बाहर निकलते एग्जाम क्वेश्चन को डिस्कस करते हो, इसका क्या उत्तर दिया इसका, अब इसको कहते हैं कि सुनने के बाद कीर्तन करना। तो ये यहां से उठ के बाहर जाके इसी के ऊपर चर्चा हो तो इसका मतलब ये अंदर थोड़ा टिका है, नहीं तो सर के ऊपर से गुजर के गया। एक बार राम कथा कर रहा था एक महात्मा, एक महीना राम कथा की, लोगों को इतनी अच्छी लगी कि महाराज 15 दिन और कथा कीजिए, 15 दिन और कथा की। विदा हुआ, महाराज को विदा किया, बेचारा अपने ऊंट के ऊपर चढ़ के जा रहा था तो पे मीटिंग बिठाई, कथा महाराज ने कितनी अच्छी की राम कथा, वाह वाह वाह। तो उनमें से जो बड़ा कथा वो ऑर्गेनाइज करने वाला था उसने बोला कथा बहुत अच्छी थी लेकिन एक समस्या है, प्रश्न एक रह गया। बोला क्या? बोला ये भगवान इसमें राम था कि रावण? अब तो सारे ही परेशान होके कहा ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है, महाराज को वापस बुला के लाओ। आदमी फास्ट दूसरे घोड़े पे गया, महाराज को रस्ते में रोका, बोला महाराज आप वापस चलिए, पंचायत ने आपको बुलाया है। बोला अच्छे लोग हैं, 1.5 महीना कथा सुनी है, बुलाया है तो चले जाते हैं, हमें क्या है? वहां चले गए। बोला महाराज आपकी कथा सुन के बड़े हम धन्य हो गए, बस ये एक प्रश्न है हमारे इस बड़े आदमी का कि इसमें से राक्षस राम था कि रावण? महाराज ने कहा राक्षस मैं था, 1.5 महीना खराब किया आपके ऊपर, 1.5 महीना खराब किया। कुछ पले नहीं पड़ा। जरा कौन राक्षस था? तो असल में कथा अंदर टिकनी चाहिए, तो उसके लिए ऐसी तीव्र इच्छा होनी चाहिए। 5 दिन कथा के पूरे हो गए, सुखदेव महाराज परीक्षत की परीक्षा ले रहा है कि महाराज अब आप क्यों सुनना चाहते हो, पानी नहीं पिया है, जलपान थोड़ा कर लो फिर कथा सुनना। पर महाराज प्यास के कारण तो महाराज का अपमान किया था ऋषि का, अब आपके मुख से कथा अमृत पीते हुए प्यास भूख सब चली गई, अब आप कथा बताइए, इसको रोकिए नहीं। तो ये कथा सुनने में ऐसी तीव्र इच्छा कैसे पैदा हो, कथा वासुदेव कथा रति कैसे हो, उसका क्या साधन है? महत सेवया शुश्रूष श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रति महत सेवया। तीर्थ, वह शब्द तीर्थ, पहले तो कथा किसी पुण्य स्थान में हो, भगवान के धाम में हो, और संतों की सेवा का अवसर मिले, भक्तों का संग करके सेवा का अवसर मिले। और भक्तों की सेवा है कथा ध्यान से सुनना, यह सबसे बड़ी सेवा है, श्रवण सबसे बड़ी सेवा है। तो भागवत में रुचि होगी, टेस्ट होगी, उसको डाइजेस्ट करना। अब प्रभुपाद लिखते हैं भगवान और भगवान के भक्त दोनों दिव्य स्तर पे होते हैं। दिव्य स्तर के होने का अर्थ क्या है? वो माया के तीनों गुणों से परे होते हैं, उसको कहते हैं दिव्य। दिव्य स्तर किसका है? जो तीनों गुणों से परे है। भगवान, भगवान का भक्त और भक्ति, भक्त भगवान और भक्ति, ये तीनों भौतिक प्रकृति के प्रभाव से परे होते हैं और ये तीनों भगवान की अंतरंग शक्ति के आश्रित होते हैं। भगवान की लीला के लिए भी अंतरंग शक्ति, भक्तों के पोषण के लिए भी, भक्ति के लिए भी अंतरंग शक्ति। तो भगवान, भक्त और भक्ति ये दिव्य हैं, ये दे आर बियॉन्ड थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। इनके ऊपर भौतिक प्रकृति का प्रभाव नहीं पड़ता। Therefore, the topics of Lord Krishna and of his pure devotees are equally good. इसलिए भगवान और भगवान के भक्तों की कथा दोनों ही बहुत सुंदर हैं, मधुर हैं, अच्छी हैं, क्योंकि दोनों हमारा समय व्यर्थ नहीं गंवाती हैं, बेकार नहीं है, दोनों दिव्य स्तर की हैं, वो ट्रांसेंडेंटल हैं। अब प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, कुरुक्षेत्र की रणभूमि वहां क्या था, वहां तो राजनीति थी, कौरवों और पांडवों की राजनीति थी, वहां तो डिप्लोमेसी थी, क्या कहेंगे हिंदी में डिप्लोमेसी को, कूटनीति थी। बट बिकॉज द टॉपिक्स आर रिलेटेड विद कृष्णा, द भगवद गीता इज देयरफॉर एडॉर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऐसी स्थिति में भी भगवद गीता, भगवान श्री कृष्ण वहां था, तो फिर वो आज पूरे विश्व के अंदर बड़ी सम्मानित और आदर के साथ पढ़ी जाती है। तो रणभूमि के अंदर इतने सारे भौतिक राजनीति, कूटनीति और नीतियों जितनी थी वो सब होने के बावजूद भी वो दिव्य है, क्योंकि भगवान वहां थे और भगवान की वाणी से निकली हुई भगवद गीता वहां प्रकट हुई है। अब प्रभुपाद जी एक सिद्धांत बता रहे हैं, देयर इज नो नीड टू इरेडिकेट पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी एक्सेट्री। इसका मतलब नहीं हमारे जीवन से राजनीति को निकाल देना है, इकोनॉमिक्स को निकाल देना है, सोशियोलॉजी को निकाल देना है, एक्सेट्रा में और भी चीजें। अर्ली डेज में, अभी इस्कान बहुत 5 साल में नहीं हुआ था, प्रभुपाद जी के भक्तों को उस वक्त में एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, इन गॉड वी ट्रस्ट, ये डॉलर के ऊपर लिखा होता है, इन गॉड वी ट्रस्ट, तो एक पॉलिटिकल पार्टी बनी थी और एक लड़ा था पार्लियामेंट की इलेक्शन। प्रभुपाद अनुमति दी थी कि अल्टीमेटली पॉलिटिकली डिवोटी क्षत्रिय हमको ट्रेन करने पड़ेंगे, समहाउ बाद में देखा कि एनर्जी सारी उधर जाती है, अभी डिवोटी कच्चे हैं, देन प्रभुपाद वाज एट दैट रिलेक्टेंट थोड़ा से, लेकिन ही अप्रूव्ड दैट। इसका मतलब, और सोसाइटी का नाम तो प्रभुपाद ने रखा इंटरनेशनल सोसाइटी, मीन्स वहां सोशल एक्टिविटीज होंगी, जहां ग्रस्त रहेंगे तो विवाह होगी, शादी होगी, तो ये सब सोशल फंक्शन होंगे, लेकिन वो सारा स्पिरिचुअल एटमॉस्फियर में होगा। तो सोसाइटी के सारे काम उनको निकाला नहीं जा सकता है प्रभुपाद जी के, कैन नॉट बी इरेडिकेटेड, व्हिच आर मंडेन टू द मंडेनर्स। भौतिकवादियों के लिए भौतिक कार्य है, लेकिन भगवान के भक्त उसको भगवान की सेवा में लगा देते हैं। ये माइक्रोफोन, प्रभुपाद जैसे नेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन में कहते हैं, ये माइक्रोफोन है, आप कथा के लिए यूज कर रहे हैं तो ये स्पिरिचुअलाइज होगी। ऐसे कोई भी चीज भगवान की सेवा में, प्रिंटिंग प्रेस, भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रिंटिंग प्रेस खोला, हाँ, पहला प्रिंटिंग प्रेस हमारे परंपरा का भक्ति विनोद ठाकुर ने खोला कलकत्ता में, जहां से सज्जन तोषणी निकलता था। तो ये प्रिंटिंग प्रेस में से क्या छपता है दुनिया में, वो भगवान के शास्त्र छापने लगे, सज्जन तोषणी छपा और सारे पुस्तक छपे। तो ये सब यूज किया जा सकता है कृष्ण की सेवा में, एवरीथिंग कैन बी यूज इन सर्विस ऑफ कृष्ण, एवरीथिंग कैन बी यूज, कुछ भी भगवान की सेवा में यूज किया जा सकता है। टू ए प्योर डिवोटी हु इज एक्चुअली रिलेटेड विद लॉर्ड सच मंडेन थिंग्स आर ट्रांसेंडेंटल इफ डोवेटल विद द लॉर्ड आर विद हिज प्योर डिवोटीज। ये सारी चीजें संसार में बंधन का कारण हो सकती हैं, लेकिन भगवान की ओर इनको मोड़ दिया जाए, भगवान के भक्तों के संग में शुद्ध भक्त इन सब चीजों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, कुछ भी भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। एक असाधु किसी के घर में भिक्षा मांगने गया, माताजी बड़ी झगड़ालू थी, पोचा लगा रही थी घर में, ऐसे ही महाराज को दे मारा पोचा जो पड़ा था कचरा ले। महाराज ने कहा कुछ तो देने सीखी कम से कम। वो जाके पोचे को अच्छी तरह से धो के नदी में 10-20 बार फिर तेल में डाल के रात को दीवा करके जला दिया मंदिर में, तो उसके उस पोचे को भी भगवान की सेवा में लगा दिया। दिया उसने जो भी है इसको भी भगवान की सेवा में लगा, कुछ तो देना सीखी कम से कम। आज ये फेंका है कुछ और फेंकेगी। तो कुछ भी भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। एक अपने साल्टेड ब्रेड में पढ़ा था, वो कहता है मैं बुक पुस्तक वितरण कर रहा था रशिया में, जब कम्युनिस्ट रशिया थी, तो एक आदमी को बुक लेने का इंटरेस्ट हो भगवत गीता को, उस वक्त पैसा नहीं था, एक शराब की बोतल थी सिर्फ, तो उसने कहा ये बोतल लो पुस्तक दो, उसने कहा दे दो, बोतल ले लिया पुस्तक दे दिया और बोतल जाके बेच के पैसा लेने ले किया गया उसमें क्या है? तो कम से कम दो फायदा हुआ, एक तो वो शराब पीने से बच गया कम से कम, और भगवत गीता मिल गई, और इसने तो जाके दुकान में बेच के पैसा वापस ले लिया, तो अब उस झगड़ा नहीं किया उसको दे दिया। तो कोई भी चीज कैसे भी भगवान की सेवा में लगाने में कोई आपत्ति नहीं है, कैसे भी लगाई जा सकती है, कैसी भी परिस्थिति में शुद्ध भक्त। प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते थे, अच्छा जो इलेक्ट्रिशियन होता है, अच्छा जो इंजीनियर होता है, वो उस बिजली से हीटर भी चला सकता है और एसी भी चला सकता है, हाँ फ्रिज भी चला सकता है और हीटर भी चला सकता है। ऐसे भगवान के भक्त जो होते हैं भौतिक चीजों को स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं और उनको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। आपको ऐसा उदाहरण दीजिए कि कोई ऐसी चीज जो जैसे नहीं भगवान की सेवा में लगती है और लगाई जा सके। क्या एनवियसनेस का जगह बहुत कम है, इसको छोड़ के बाकी सब लग सकता है। एनवियसनेस इस टू, इस एक को तो तोड़ के निकालना पड़ेगा हृदय से, अनुसूय वे। एक वेश्या आई बहुत सुंदर सोने का माला भगवान को अर्पण करने के लिए, ब्रह्मचारी कट्टर पुजारी ने बोला निकलो यहां से, कहां आ गई? भगवान ने पुजारी को धोती से खींचा, बोला तुमको दे रही है मेरे को दे रही है? तो बेचारा पुजारी पीछे मुड़ के कहता है ये तो आपको दे रही है, बोला लगाओ मेरे, डालो मेरे गले में। तुम लोग हो तो फंस जाओगे, मैंने को क्या फर्क पड़ता है, मेरे को चढ़ा दो इसमें क्या, देने आई है बेचारी। तभी वो तो हम तो नहीं कर, कभी कभी डरते हैं लेकिन भगवान को थोड़ी कोई डर लगता है। तो शुद्ध भक्त जो होता है कुछ भी भगवान की सेवा में किसी का भी होगा लगा लेता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं, उसको कोई परेशानी नहीं उस स्थिति में। तो कुछ भी भगवान की सेवा में कैसे भी लगाया जा सकता है। वी हैव हर्ड एंड टॉक्ड अबाउट द एक्टिविटीज ऑफ द पांडवास एंड वी आर नाउ dealing with the topics of Maharaj Parikshit, but because of all these topics are related to the Lord Sri Krishna, they are all transcendental and pure devotees have a great interest in hearing them. Shri Prabhupada ji kehte humne pehle bhi pandavon ki katha kahi hai, yani aage Bhishma Pita ke prasang mein bahut kuch kaha hai, to ye sari jaise Bhagavad Gita hai pehle adhyay mein kya hai, Bhagwan Sri Krishna to prakat hi nahi hote hain, sirf aadha shlok bola hai, पहले अध्याय में आधा श्लोक भगवान श्री कृष्ण का है, कौन सा 25वां, कौन सा, क्या नाम है, वाच पार्थ पश्येताम कुरुनिति, ये जो शब्द है ये भगवान श्री कृष्ण के हैं और यही टर्निंग पॉइंट है भगवत गीता की। अर्जुन ने लड़ने के लिए तैयार होते हुए अपना डिसीजन, भगवान ने अर्जुन को इस स्थिति में डाला, ऐसे उंगली उठाया कृष्ण ने, ऐसे उंगली उठाया कहा पश्येताम, देखो पांडु पुत्रा नाम, हाँ देखो पश्चेताम कुरुनिति, ये तुम्हारे खानदान के सारे खड़े हैं, किसको देखना चाहते हो? कृष्ण सेड दीज वर्ड्स। लेकिन है क्या सेना के नाम है तो उसको भगवत गीता में क्या महत्व प्रभु बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद कृष्ण बिकॉज दिस टॉपिक इज गोइंग टू ब्रिंग कृष्ण अभी कृष्ण भगवान का दर्शन होगा इसमें इसलिए ये सारे स्पिरिचुअल हैं क्योंकि कृष्ण से कनेक्टेड है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस मैटर इन कनेक्शन विद प्रेयर्स ऑफ भीष्म देव प्रभुपाद जी अब कहते हैं कि ये हमने पहले ही नाइन्थ चैप्टर में इनको बहुत डिस्क्राइब किया है कि भगवान के साथ सारी चीजें जुड़ी हो कोई भी चीज भगवान से जुड़ी हो तो उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं कोई चीज ऐसी भगवान से जुड़ी हो कैसी भी हो वो अच्छी है एक बार किसने पूछा प्रभुपाद जी से कि भगवान इज ऑल गुड फिर उनके फिर ये पाप कहां से आया वो भी भगवान के पीछे हैं तो प्रभुपाद ने उसको उत्तर क्या दिया मालूम है क्या कहा यू लुक वेरी नाइस ब्यूटीफुल बट यू हैव टू पास स्टूल एंड यूरिन व्हाट डू यू थिंक तो इससे आप खराब थोड़ी हो गए तो ये सब कुछ भगवान में है सब कुछ अच्छा है लेकिन ये भी तो भगवान में है उसका भी आवश्यकता पड़ती है ना कि पाप भी है सब कुछ है माया भी उसकी है उसको क्यों रखा है उसका अपना जरूरत है अच्छा अब प्रभुपाद जी लिखते हैं अवर ड्यूरेशन ऑफ लाइफ इज नॉट वेरी लॉन्ग एंड देर इज नो सर्टेनिटी ऑफ व्हेन वी शैल बी ऑर्डर्ड टू लीव एवरीथिंग फॉर द नेक्स्ट स्टेज अब यहां तक प्रभुपाद जी ने पहले का भगवान और भगवान की कथा और जो चीज भगवान से संबंधित है वो सारी चीजें हम स्वीकार करते हैं किसी को नहीं कहते हैं कि निकालो ऐसे प्रभुपाद जी ने जब जो जो पहले पहले भक्तों को स्वीकार किया वो कोई वृंदावन से नहीं आए थे वैष्णव नहीं थे कोई तिलक लगा के आए थे जैसे आए थे वैसे उनको स्वीकार किया उनके अंदर कितने भी दोष थे उनको नहीं देखा उनके अंदर कीर्तन में सेवा करने के थोड़े शौक को देखा उसी को प्रभुपाद ने स्वीकार कर लिया तो उसके उनके दुर्गुणों को नहीं देखा तो ये गुण ग्रही का लक्षण है अच्छे गुण हरेक में होते हैं उसको ग्रहण करने चाहिए अब प्रभुपाद का जीवन बहुत थोड़ा है दस इट इज अवर ड्यूटी टू सी दैट नॉट ए मोमेंट ऑफ अवर लाइफ इज वेस्टेड इन टॉपिक्स व्हिच आर नॉट रिलेटेड विद लॉर्ड कृष्ण ये तो हमारे को सीधा सा प्रभुपाद जी का एडवाइस है कि थोड़ी जिंदगी है वैसे जिंदगी को तीसरे स्कंद भागवत में जिंदगी को काउंट नहीं नहीं प्रहलाद महाराज काउंट करके सुना रहा है सातवें स्कंद में 100 साल अगर आदमी की जिंदगी है 10 साल तो 5 साल तो बचपन के में गए 5 दूसरे 10 तो खेलने कूदने में गए आखिरी के 10 बुढ़ापे किसी काम के नहीं रहोगे अब बाकी जो बचे 20 वाले उसमें आधे तो सोने में गए हाँ, आधे तो सोने में गए अब घूम फिर के आपके पास 10 साल बचते हैं 10-12 जो एक्टिव जिंदगी का टाइम बचता है इतना अब उसमें बेकार की बातें सुनेंगे तो भगवान की कथा कब सुनेंगे टाइम बहुत कम है हमारे पास अगर देखा जाए ऐसे तो टाइम है नहीं सोने में सबसे आजकल तो लाइन में खड़े होने में 4 साल चले जाते हैं हाँ, लाइन में खड़े होने में बहुत लोगों का टाइम खराब होता है किसी ने काउंट किया है कि 4 साल जिंदगी के लाइनों में ट्रैफिक जाम में खड़े होके पूरे हो जाते बेकार के तो ये सारा जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण है इसको गंवाना नहीं चाहिए एनी टॉपिक हाउएवर प्लेजेंट इज नॉट वर्थ हियरिंग इफ इट इज डिवाइड ऑफ इट्स रिलेशन टू कृष्णा कितना भी अच्छा लगे मनोहर लगे टीवी का सीरियल हो या सिनेमा हो मनोरंजन हो सकता है लेकिन आपकी जिंदगी बेकार में चली जा रही है उतनी और वो आपके दिमाग में अगर छाया रह गया तो 1-2 दिन और भी खराब करेगा उधर जाता नहीं है दिमाग से उसका इंप्रेशन पड़ा रहता है इसलिए उससे बचना चाहिए अब श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं स्पिरिचुअल प्लैनेट गोलोक वृंदावन इज एटर्नल अबोड ऑफ कृष्णा शेप लाइक ए लोटस वर्ल्ड्स ऑफ द लोटस फ्लावर भगवान जब धरती पे आते हैं तो अपने धाम को साथ लाते हैं और भगवान के चरणों को भी चरण कमल को भी कमल कहते हैं इसलिए भगवान को यहां भगवान के चरण कमल कमल के ऊपर भी है कमला भी बैठी हुई है और कमल जैसा उनका सुंदर है अ हर एक जीव नित्य है उसके स्वभाव से। और वो संसार के जन्म मृत्यु में इस भौतिक प्रकृति के संसर्ग में, इसके संपर्क में आने से हो गया है। और अपने आप को इससे मुक्त करके भगवान के धाम वापस जा सकता है। और जो चाहता है कि मैं वापस इस भौतिक जगत में ना आऊं, भौतिक शरीरों में दुख नहीं भोगूं, तो उनको अपना बहुमूल्य समय संसार के बेकार बातों में नहीं गवाना चाहिए, और सीरियसली भगवान और भगवान के भक्तों के संग में भगवान की कथा सुननी चाहिए। यहां ये श्लोक पूरा होता है, तात्पर्य इसका हो गया पूरा। अभी कोई प्रश्न है? अब इसके बाद सूत गोस्वामी एकदम बोलेंगे। वो बोलेंगे, इसके बाद बोलना शुरू कर देंगे। सो क्या हमने आज इस श्लोक से ग्रहण किया? एक तो ईगरनेस होनी चाहिए, बहुत उत्कंठा होनी चाहिए कृष्ण कथा सुनने के लिए। और जो चीज भगवान से संबंधित नहीं हो, भगवान के भक्तों से संबंधित नहीं हो, कितने भी मनोरंजन वाली हो, उसमें जिंदगी को व्यर्थ में गंवाना नहीं चाहिए। ये बहुत मुश्किल है, इसको अवॉइड करने के लिए बहुत बड़ी बोल्डनेस चाहिए, बहुत बड़ा हिम्मत चाहिए ये करने के लिए। इट्स नॉट ईजी, दोनों डिफिकल्ट है, कथा सुनना डिफिकल्ट है और दूसरी चीजें छोड़ना डिफिकल्ट है। इसे डबल डिफिकल्ट है एक्चुअली। इसके लिए अच्छे भक्तों का संग ही एक सहारा है जिससे ये संभव है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है? नो प्रश्न? हाँ जी।
आपने बोला कि ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो भगवान की सेवा में नहीं लगा रह सकता, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ऐसा कुछ है जो, मतलब अभी आप बोल रहे हैं कि भगवान से रिलेटेड हो, तो भगवान से रिलेटेड तो सब कुछ हो सकता है, तो जो भी हम कार्य कर रहे हैं अगर उसको रिलेटेड हो सकता है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कुछ रिलेटेड नहीं हो, उसको नहीं करना चाहिए। आपने बोला उसको छोड़ना चाहिए, कुछ छोड़ने की जरूरत है क्या एक्चुअली?
वो टॉपिक जो बेसिकल में एनवियसनेस था, ट्रांसेंडेंटल रियल्म में प्रश्न ये है कि कुछ भी जब नहीं छोड़ा जा सकता, सब भी भगवान से जोड़ा जा सकता है, तो फिर एक एनवियसनेस जो टॉपिक आया था, और क्या, और तो कुछ बात नहीं हुई, एनवियसनेस की एक बात हुई थी।
नहीं, अभी आपने जो एंड में बोला समरी, कि हमको मतलब भगवान से जो रिलेटेड है और जो रिलेटेड नहीं है उसको नहीं रखना चाहिए,
जरूरत इसलिए है कि माया भी भगवान की ही है, लेकिन उसमें भगवान ने कहा है मत फंसना। है भगवान की, लेकिन कहा है उसमें मत फंसना, और कथा है उसको सुनना। तो उसने कहा है क्या करना क्या नहीं करना, इसको बोलते हैं, इसको भगवद गीता की लैंग्वेज में कहा है कार्य कार्य व्यवस्थित हो, आपका अटैचमेंट और अवर्शन व्यवस्थित करो, कौन सी चीज कहां होनी चाहिए, कौन सी चीज कहां होनी चाहिए। तो डिटैचमेंट भी जरूरी है, भगवान में डिटैचमेंट है तो हमें भी होनी चाहिए, भक्तों में, भगवान में भी त्याग है तो हमें भी होना चाहिए, हमें त्याग करना चाहिए संसारी बातों को सुनने का, या इस श्लोक में तो वो त्याग करना भी जरूरी है। अगर वो भगवान की सेवा के फेवर में नहीं है तो उन चीजों को छोड़ना चाहिए। बाकी एनवियसनेस का जहां तक है, ट्रांसेंडेंटली बिराजरानी और चंद्रावली के बीच में एक, वो भी ट्रांसेंडेंटल है, बेसिकली कोऑपरेशन है, बट कोऑपरेशन कॉम्पिटेटिव मूड है वहां, लेकिन वो एक दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए नहीं है, कृष्ण के प्रेम बढ़ाने के लिए। लेकिन भागवत गीता में सीधा है कि जो ईर्ष्या रहत है वही इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। ईर्ष्या जिसके पास, एनवी जिसके पास है, वो एलिजिबल ही नहीं है मेरे इस पाथ के ऊपर चलने के लिए, तो वो छोड़ने वाली चीजों में है। समथिंग यू वी हैव टू गिव अप। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? हाँ जी।
प्रकट और अप्रकट भगवान भी प्रकट और अप्रकट होते हैं, भक्ति भी प्रकट अप्रकट होती है, रिवाइव होती है, जैसे भक्त के हृदय में सत्संग के साथ या साधु संघ के साथ ये प्रकट होती है या डॉर्मेंट होती है, उसे रिवाइव होती है।
भक्ति रहती सदा है, लेकिन भक्ति भक्ति को करने वाले कभी कम होते हैं, कभी ज्यादा होते हैं। भक्ति कहीं नहीं जाती है, लेकिन भक्त कम हो जाते हैं, कभी ज्यादा हो जाते हैं। जब कम हो जाते हैं तो भगवान फिर वापस भक्ति को पुनः जागृत करने के लिए प्रकट होते हैं। वो जो धर्म कहते हैं, धर्म तो असल में है एक ही, कि भगवान से प्रेम करना, उसी के लिए भगवान को अवतार लेना है। धर्म की एक परिभाषा सीधी यही है। तो भक्ति कहीं जाती नहीं है, भक्ति तो यही है, लेकिन अब उसको उसको पालन करने वाले कहां हैं और कहां नहीं है। भक्ति स्कंद पुराण के महात्म में भक्ति नारद को साक्षात वृंदावन में मिलती है, अपने दो बेटों के संग में, ज्ञान और वैराग्य, और कहती है कि अगर मेरा लोग यहां पालन नहीं करेंगे तो मैं यहां से समुद्र पार चली जाऊंगी, काये गमिष्यामि, मैं चली जाऊंगी। और ऐसे मानना है कि भक्ति को वाकई लोगों ने स्वीकार नहीं किया और भक्ति प्रभुपाद की दिल में बैठ के समुद्र पार चली गई, बाहर चली गई, और फिर स्कान के रूप में भक्ति वापस पूरी दुनिया में प्रकट होके वापस भारत में भी आई। ये रियलाइजेशन कुछ वृंदावन के संतों की, प्रभुपाद के 100 साल के जन्म शताब्दी में जब आए थे, तो ये श्लोक निकाल के भागवत के महात्म्य का, जहां भक्ति कहती है मैं कोई यहां नहीं मेरा ग्रहण करेगा, भक्त नहीं बनेगा, तो मैं चली जाऊंगी यहां से, तो ऐसा लगता है कि इस महात्मा के हृदय में बैठ के भक्ति समुद्र पार चली गई। और अब ये भक्ति जो है, एक्टिव भक्ति, जो कमिटेड भक्ति है, वो कृष्ण भावना में है। पूजा पाठ बहुत जगहों पे, कृष्ण के मंदिर बहुत जगहों में, लेकिन प्रेम और भक्ति कहीं और नहीं है, वो कृष्ण भावना इस्कान में है। प्रभुपाद के द्वारा भक्ति को पुनः, पहले लिखा है रूप गोस्वामी के लिए, काले न समय के प्रभाव से रस केली वार्ता वृंदारण्य, वृंदावन के प्रेम की भक्ति लुप्ताम, लुप्त हो गई थी, उसको चेतना महाप्रभु ने रूप गोस्वामी से फिर प्रकट किया। ये रूप गोस्वामी की महिमा में लिखा हुआ है कि वृंदावन रस केली वार्ता, और वहां उस श्लोक को पढ़ेंगे चेतना चरितमृत, प्रभुपाद ने लिखा है रूप गोस्वामी के द्वारा पूरी दुनिया में, अब उसमें श्लोक में पूरी दुनिया नहीं है, उस श्लोक में नहीं लिखा है पूरे विश्व में, लेकिन प्रभुपाद लिखा है ये भक्ति पूरे विश्व में प्रचार होगा। और फिर दूसरा रूप गोस्वामी का किताब है नेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, उसके पहले श्लोक में क्या लिखा है, जो ये 6 वेग को सहन कर सकता है वो पूरे विश्व में शिष्य बना सकता है। अब ये दोनों को पढ़ते हैं तो ये फोरकास्ट प्रभुपाद के लिए दिखता है कि उन्होंने वृंदावन की लीला को पूरे विश्व में प्रचारित किया। तो जो रूप गोस्वामी के साथ ये 2 श्लोकों को कभी जोड़ के देखते हैं तो लगता है कि प्रभुपाद ने ये इस बार सार्थक करके दिखाया, भक्ति को, वृंदावन की लीला को विश्व भर में प्रकाशित किया है। एक दिन रूप गोस्वामी के तिरुभाव तिथि पे हम देखा तो ये श्लोक हमको दोनों ऐसे लगे कि इट हैज ए डिफरेंट, जो है अलग ही इसका भाव प्रकट होता है। वहां भी मेक डिसाइपल ऑल ओवर द वर्ल्ड है, ये रूप गोस्वामी का श्लोक है। हाँ, क्या क्या लिखा है, शिष्य वाचो वेग, लास्ट वर्ड इज लास्ट वर्ड, पृथ्वी तो शिष्य, पृथ्वी तो शिष्य कैसे लिखेगा, वृंदावन में बैठे कैसे लिखेगा। और वहां वो लिखा है कि भगवान ने वापस वृंदा के लिए वार्ता पूरी दुनिया में प्रकट करने के लिए। ये दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो प्रभुपाद के द्वारा ये काम कैसे होना है रूप गोस्वामी के बाद, ये इसमें से बहुत शब्दों से प्रकट हो रहा है। तो भक्ति रहती है लेकिन भक्त नहीं रहते, धर्म रहता है लेकिन धर्म के पालन करने वाले नहीं रहते। हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की, धनंदराज श्री।